और आज मैंने कुछ विशेष योग बताया था, हमेशा नहीं होता है लेकिन आज है। तो उनमें से कितने लोग हैं जो जानते हैं आज कुछ विशेष योग है? क्या है आज, क्या विशेष योग है? हैं, सोमवार। हाँ, सोमवार का दिन। तो गर्ग संहिता के अनुसार राधा रानी का जन्म सोमवार को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तो होती ही है लेकिन सोमवार का योग हमेशा नहीं मिलता है, शायद बहुत सालों के बाद मिला है। तो आज बहुत विशेष ये दिन है। तो राधा रानी की महिमा तो बहुत वर्णित है शास्त्रों में। तो इस समय हम सुनेंगे ब्रह्म विवर्त पुराण से एक ऐसी घटना है जिसमें गर्ग जी जिस समय नंद महाराज के घर में आते हैं, कृष्ण का नामकरण करते हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से। गर्ग जी कहते हैं, हे नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। अब गर्ग जी कृष्ण के 33 नाम गिनाते हैं। कृष्ण पीताम्बर कंस धनसी चा विस्तर श्रम देवकी नंदन श्रीशो यशोदानंदनो हरि सनातनोच्युतो विष्णु सर्वेश सर्वरूपधृे सर्वाधार सर्वगति सर्वकारण कारण राधा बंधु राधिकात्मा राधिका जीवन स्वयं राधिका सहचारी चा राधा मानस पूरक राधा धनो राधिकांगो राधिका शक्त मानस राधा प्राणो राधिकेशो राधिका रमण स्वयं राधिका चित्त चौरश्चा राधा प्राणाधिक प्रभो परिपूर्णतमं ब्रह्म गोविंदो गरुड़ध्वज नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि सांप्रतं व्रज जन्म मृत्यु हरान्येव रक्ष नंद स्वभक्षणे। हे नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं हृदय में धारण करो। ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है। तो नंद गर्ग जी ने कृष्ण के ये 33 नाम गिनाए। इन 33 नामों में 13 नाम बीच में कुछ ऐसे हैं जो राधा रानी से संबंधित हैं। तैतीस नामों में से 17वां नाम से लेकर के 29वें नाम तक जो 13 नाम है ये राधा रानी से संबंधित हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से। नंद जी बोले कि आप इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार कराइए, परंतु राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम बताए गए हैं उनमें जो राधा नाम आया है वो राधा कौन है और किसकी पुत्री है, आप समझ रहे हैं? हाँ, कौन पूछ रहे हैं, कौन कह रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? कौन कह रहे हैं इस बात को? नंद जी पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? गर्ग जी से पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? कि ये राधा राधा नाम ये जो आए हैं तो 13 नामों में जो राधा का नाम आया है, कृष्ण के 33 नाम है, इन 13 नामों में जो राधा का नाम आया है वो राधा कौन है? तो नंद जी नहीं जानते कि राधा कौन है। तो कहते हैं कि इन राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह आपने बताए उनमें जो राधा नाम आया है वो राधा कौन है और किसकी पुत्री है। नंद की ये बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले ये तत्व बहुत रहस्यपूर्ण है। गर्ग जी क्या बोले, ये तत्व बहुत रहस्यपूर्ण है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग जी बोले नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। ये वृत्तांत पहले गोलोक में हुआ था। किसी समय गोलोक में श्री दामों का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। श्री दामा के साथ कलह हुआ राधा का, वो कैसा था, लीला प्रेरित कलह था। गोलोक धाम में जो कलह होता है वो ऐसा नहीं होता है, कलयुग जैसा जो है कलह नहीं होता है। वहाँ पर अगर कलह होता है तो लीला प्रेरित होता है। तो लीला प्रेरित कलह हो गया, उस कलह के कारण श्री दामा के साप से लीलावश राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे गजभानु गोप की पुत्री हैं और कीर्तिदा उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनी संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण की देवी हैं, श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से ये मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है, इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री हैं वे पुरुष हैं, अथवा वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से समान हैं। पराक्रम बुद्धि ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें कोई कमी और अधिकता नहीं है। राधा कृष्ण में किसी भी दृष्टि से कमी और अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी है और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। तो वास्तव में कृष्ण मथुरा से गोकुल आए हैं तो एक कारण बनाया, क्या, कंस का भय। भगवान को थोड़ी कंस का कोई भय है, ये तो एक बहाना था कि कंस का भय है, इसलिए वसुदेव जी छिपा करके कृष्ण को कारागार से, मथुरा के कारागार से गोकुल मिला है ना। गर्ग जी कह रहे हैं कि कंस के भय का बहाना बना करके ये आए, वास्तव में किस लिए हैं, राधा का अनुसरण करने के लिए आए हैं, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है, जो भय के भी स्वामी हैं उन्हें किससे भय हो सकता है। साम वेद में राधा शब्द का अर्थ बताया गया है। ये सब कौन बता रहे हैं, गर्ग जी, किससे बता रहे हैं, नंद महाराज से। साम वेद में राधा शब्द का विश्लेषण बताया गया है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को ये अर्थ बताया था। नारायण देव ने, उन्हीं जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो वही नारायण देव ब्रह्मा जी को बताते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताया था, फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में शंकर जी को इसका उपदेश दिया। हे नंद, तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे ये अर्थ बताया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा नाम का जो अर्थ है, इसकी भी परंपरा बता रहे हैं गर्ग जी। क्या परंपरा है, कि भगवान गर्भोदक साई विष्णु ने ब्रह्मा जी को राधा नाम का अर्थ बताया और ब्रह्मा जी ने किसको बताया? शंकर जी को बताया और शंकर जी ने किसको बताया? मुझको, यानी गर्ग जी कह रहे हैं मुझको बताया। और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। राधा शब्द में जो राह है, हाँ, जो राह है ये करोड़ों जन्मों के पाप और शुभ अशुभ कर्मों से छुटकारा दिलाता है। हाँ, इसमें चार अक्षर हैं, रा आ धा आ, है ना। तो जो पहला अक्षर है रा, ये क्या है? ये करोड़ों जन्मों के पापों से और शुभ अशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। उसके बाद क्या है? आ, आ ये जो अक्षर है ये गर्भवास, मृत्यु और रोग को दूर करता है। इसके बाद तीसरा है धा, धा आयु की हानि का निवारण करता है। और धा आयु की हानि का निवारण करता है, है? इसके बाद क्या है चौथा? आ, आ भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से इन सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो एक तो व्याख्या ये हो गई, अब दूसरी व्याख्या फिर इन चारों अक्षरों में किस तरह से होती है। राधा नाम में जो रा है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में निश्चल भक्ति और दास्य प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा अक्षर क्या? आ, आ सर्ववांछित सदानंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति कराता है। इसके बाद तीसरा अक्षर धा, धा श्री हरि के साथ अनंत काल तक सहवास का सुख, उनके समान ऐश्वर्य और तत्व ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद चौथा अक्षर आ, श्री हरि की भांति तेज और दान शक्ति, योग शक्ति और सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर प्रदान करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं। हरि बोल, इसमें संशय नहीं है। हरि बोल। राधा माधव के नाम की कुछ व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी वो मैंने यथा मति यहाँ बताई है। इन नामों के संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। हे नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। कौन कह रहे हैं? गर्ग जी कह रहे हैं, है ना। और नंद जी नहीं जानते अभी कि राधा कौन है, है? गर्ग जी कह रहे हैं यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक इस विवाह को संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। इसके बाद अब एक घटना, जो नंद जी कृष्ण को गोद में लेकर के भांडीर बन जाते हैं और वहाँ मेघों की घटा घिर जाती है और तेज आंधी आती है और नंद जी भयभीत हो जाते हैं और कृष्ण बालक के रूप में भयभीत हैं। उस समय राधा रानी आती हैं, निर्जन वन में राधा रानी आती हैं और नंद जी राधा रानी को प्रणाम करते हैं, है? तो इसको जरा आप सुनिए बड़े ध्यान से कि नंद जी जो है राधा रानी का दर्शन करते हैं, बहुत अद्भुत है। उस निर्जन वन में राधा को देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं में प्रकाश फैला रही थी राधा रानी जो है। उस समय अंधकार था वन में, है? लेकिन दसों दिशाओं में प्रकाश, करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं में प्रकाश फैला रही थी। नंद राय ने उन्हें प्रणाम किया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया और वे बोले, सुन रहे सब लोग, कौन बोल रहे हैं? नंद जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? राधा रानी से बोल रहे हैं। वे बोले, देवी गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं ये जानता हूँ कि तुम श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। लक्ष्मी तो हरि की प्रेयसी है, उनसे बढ़कर हो। साथ ही मैं ये भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ निर्गुण और अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। देवी अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। कौन कह रहे हैं? नंद जी कह रहे हैं राधा रानी से। क्या कह रहे हैं? अपना मनोरथ पूरा करने के पश्चात मुझे मेरा पुत्र लौटा देना। तो उनका मनोरथ क्या है? विवाह। तो विवाह करेंगे राधा रानी, और फिर कहते हैं मेरे पुत्र को लौटा देना। नंद जी कहते हैं, यूं कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, हे नंद, ये रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना हो। राधा रानी कह रही हैं, एकांत, ये बिल्कुल एकांत स्थान है। नंद जी राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और राधा रानी उनको नंद कह करके बोल रहे हैं। सोचिए, राधा रानी उनको क्या बोल रहे हैं? नंद, है ना। हे नंद, ये रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना हो, इसके लिए प्रयास करना। हे नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। देखो राधा रानी कैसे बोल रही है, राधा रानी कैसे बोल रही हैं। गर्ग जी के वचन से ही तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो, हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो, हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं। राधा रानी कह रही, अब तुम गोकुल में जाओ, ब्रजेश्वर तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वो मुझसे मांग लो, उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। राधा रानी कह रही हैं। श्री राधिका का ये वचन सुनकर नंद जी ने उनसे कहा, देवी तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। सुन रहे सब लोग ध्यान से, नंद जी ने क्या मांगा? ये हम लोगों के लिए, हमें क्या मांगना चाहिए? आप समझ रहे, हमें क्या मांगना चाहिए? हाँ, चरणों की भक्ति। क्या मांगा है? तुम प्रीतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो, दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो। हम दोनों पति पत्नी कौन है? नंद और यशोदा। तो नंद जी कह रहे हैं कि हम दोनों पति पत्नी को ये सौभाग्य कृपा पूर्वक दीजिए। क्या सौभाग्य है? कि तुम दोनों के सन्निधान में हम लोग रहें। नंद जी का ये वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, ब्रजेश्वर मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी, इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो, हम दोनों के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। हम दोनों के चरण कमल मतलब राधा और कृष्ण के चरण कमलों में, और तुम दोनों की भक्ति बनी रहे। तुम दोनों मतलब नंद और यशोदा, तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी, अंत में तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। इसके बाद फिर कुछ और घटनाएं घटती हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूं, कि राधा रानी फिर एकांत में जब जाती हैं तो कृष्ण छोटे बालक से अब युवक बन जाते हैं। अब विवाह का जो अवसर है वो आता है, तो कृष्ण जो है छोटे शिशु अवस्था से वो युवक बन जाते हैं, और फिर कृष्ण राधा रानी से बातें करते हैं। तो इसमें काफ़ी बातें हैं, उनमें से मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। कृष्ण कहते हैं, रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ। कोई राधा नाम लेता है उसमें रा वो शब्द रा अक्षर जैसे ही बोलता है तो कृष्ण कहते हैं मैं भयभीत सा होकर के उसको उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ। भयभीत का मतलब जैसे जल्दी से कोई देता है ना, डर करके कोई चीज जो है जल्दी से देता है। जल्दी से क्यों देता है? अगर जल्दी ना देके तो उसका और ऋण बढ़ जाएगा, तो कृष्ण जो है इतने ऋणी हो जाते हैं। अगर आप ऋण को जल्दी चुकता नहीं करते तो क्या होता है? ऋण बढ़ जाता है ना, बहुत बढ़ जाता है। तो कृष्ण भी जो है डरते हैं कि ऋण बहुत बढ़ जाएगा। तो कोई राधा नाम लेता है उसमें रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। हरि बोल। और सुनिए बड़े ध्यान से, जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है। हरि बोल। देखो कहाँ 16 उपचार है, कितनी लंबी विधि है 16 उपचार करना है, है? और कहाँ केवल राधा शब्द बोलना है। हे राधे, मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। हरि बोल। भगवान कह रहे हैं, भगवान राधा रानी से ही कह रहे हैं कि हे राधे, तुम मुझे उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। ये भी तो एक प्रेम का एक नमूना है। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा अनंत शिव धर्म नर नारायण ऋषि कपिल गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री प्रकृति ये देवियाँ और देवता भी मुझे प्रिय हैं, तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। हरि बोल। ये सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं। ये सब देवता नाम बताए ना, ये सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं किंतु तुम तो मेरे वक्षस्थल में विराजमान हो। राधा रानी का स्थान कहाँ पर है? कृष्ण के वक्षस्थल में है। इसके बाद राधा रानी और कृष्ण के बीच में कई बातें होती हैं। अब मैं दूसरी घटना का वर्णन कर रहा हूँ। इसी बीच में ब्रह्मा श्री हरि के सामने आए। अब ब्रह्मा जी आए, सब लोग सुन रहे हैं क्योंकि अब ये ब्रह्मा जी के आने का ही समय था, है? क्योंकि अब विवाह होना है, है? तो इसी बीच में ब्रह्मा श्री हरि के सामने आए, उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे, चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, संपूर्ण अंगों में रोमांच हो रहा था और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके ब्रह्मा श्री हरि के और निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप आए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरण कमलों को अपने जटा जाल से वेष्टित करके ब्रह्मा जी ने कमंडलों के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनको धोया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने कमंडलों के जल से राधा रानी के चरणों को धोया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगम के अनुसार श्री राधा की स्तुति करने लगे। अब सुनिए बड़े ध्यान से ब्रह्मा जी कैसी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। सुन रहे सब लोग, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, राधा रानी से कह रहे हैं कि मैंने 60,000 वर्षों तक कहां तपस्या की, पुष्कर तीर्थ में। तब वर देने के लिए श्री हरि स्वयं पधारे, उन्होंने वर मांगो ऐसा कहा तो मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। ब्रह्मा जी ने, है ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान से ये कहा, ये वर मांगा। क्या वर मांगा, कि जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। और कितनी तपस्या की थी, 60,000 साल तक तपस्या की थी। मेरी ये बात सुनकर श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय क्षमा करो, उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरण कमलों के दर्शन कराऊंगा। इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसीलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज वो वरदान मुझे मिला है, जो 60,000 साल तक तपस्या मैंने की थी, आज वो वरदान मुझे मिला है कि तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन हुआ। माता, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में भी सबके मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंश भूता हैं, सब देवियां प्रकृति की अंश भूता हैं, अतः वे निश्चय ही प्राकृतिक हैं। तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। और बाकी जितनी देवियां हैं वो प्रकृति की अंश हैं, तो उनका जो शरीर है वो प्राकृत है। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा है, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण है, इस बात का निश्चय कोई नहीं कर सकता। क्या समझे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप राधा हैं, ये कृष्ण है, या आप कृष्ण हैं, ये राधा है, इस बात का भी निश्चय कोई नहीं कर सकता, ऐसा मैंने वेदों में वर्णन पाया है। अंबिके, जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, गोलोक धाम कहाँ है, ब्रह्मांड से बाहर है ना, ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसका जो आवरण है उसके बाहर है और ऊपर है। गोलोक जो है ब्रह्मांड से बाहर है और कहाँ है, ऊपर है। उसी तरह वैकुंठ भी है, माँ जैसे वैकुंठ और गोलोक अजन्मा है, उसी प्रकार तुम भी अजन्मा हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंश के अंश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपिणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंश भूता हैं। श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही इनकी आधार हो। माँ, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से ये परमेश्वर श्री हरि प्राणवान है। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है, नहीं माँ, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्य हो। तुम इनकी अंश स्वरूप हो या ये तुम्हारे अंश हैं, ये निर्णय कौन कर सकता है, ये भी निर्णय नहीं कर सकते हैं क्या, कि तुम इनकी अंश हो या ये तुम्हारे अंश हैं, इस बात का भी निर्णय नहीं किया जा सकता। मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रों का 1% भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। क्या समझे, वेद भी या वेद के पंडित भी तुम्हारे गुणों का 1% भी वर्णन करने में असमर्थ हैं, फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है। समझ रहे, अगर वेद ही नहीं, वेद ही अगर आपके गुणों को 1% नहीं वर्णन कर सकते हैं और वेदों को जानने वाले भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर दूसरा कौन कर सकता है। इस स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो, फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा। जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुनने में भी नहीं आई उसका वर्णन कौन कर सकता है। मैं और महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। ये तीन लोगों की बात आई है। मैं मतलब कौन? ब्रह्मा जी, और महेश्वर मतलब शिव जी, और अनंत मतलब शेष जी, है ना? तो ब्रह्मा, शिव और शेष कोई भी तुम्हारी स्तुति करने में स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमों का अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जैसा कुछ कहा है उसके लिए तुम मेरी निंदा नहीं करना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं उनकी योग्य और अयोग्य पर भी समान कृपा होती है। जो पालन की योग्य संतान है उसका क्षण क्षण में गुण और दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेह पूर्वक क्षमा करते हैं। यूं कहकर ब्रह्मा उन दोनों के सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वो निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। समाप्त कर रहा हूं। अपने कर्मों का उच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीत कर समस्त लोगों को लांघता हुआ वो तम गोलोक धाम में चला जाता है। हरिओम। ये ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है इसमें बहुत विनम्रता है, बहुत समर्पण है, बहुत गहराई है, है ना? तो इसमें बताया गया कि अगर कोई इसका अभ्यास करे तो गोलोक धाम जाने का उसको रास्ता जो है खुल जाता है। तो इस तरह की बहुत सी मतलब बातें हैं, इससे पता चलता है कि राधा रानी की कैसी महिमा है, कैसी दिव्य महिमा है। अब आगे का जो कार्यक्रम है वो आप लोग देखेंगे, और यहाँ पर ये जो मेरा प्रवचन है समाप्त होता है। श्रीमती राधा रानी महिमा महा महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
आपको पता है कानपुर में तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।